विष्णु ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी दिव्य कहानी।
जो भी हमने गीत में सुना, कैसे बनाई जीवन, हमारा अनुभव उसी बात से आरंभ होता है। 28 वर्ष पहले जबकि हमें भगवान के बारे में अर्थात जैसे भक्ति मार्ग के अंदर मंदिर ठिकानों में भगवान को ढूंढना या उसको पाने की अभिलाषा अपनी उस छोटी सी आयु के अंदर नहीं थी, लेकिन सत्य जीवन अवश्य चाहती थी। सत्य को जानना इसलिए कि दुनिया के अंदर जितने भी हमने व्यक्ति देखे, अति दुखी, अशांत, आपस में किसका कोई स्नेह नहीं, जिसका भी अगर आपस में कोई स्नेह था तो उसमें भी स्वार्थ, तो ये कब कब ये संकल्प अवश्य चलता था कि आखिर हम सबने इस दुनिया में जन्म लिया ही क्यों है। पिछले कई जन्म हो चुके हैं या आगे भी कोई जन्म होने वाले हैं, इस पर कभी हमने विचारा नहीं, लेकिन जो वर्तमान हम देखते थे उस पर जरूर चलता था कि मनुष्य की ऐसी जीवन क्यों, जिसमें छल कपट पाप सब भरा हुआ। स्कूल के अंदर मॉरल साइंस में एक प्रश्न था कि मानव को किसने बनाया, जिसका उत्तर एक ही पंक्ति में था, भगवान ने। तो हम ये समझते थे कि भगवान भी ऐसा कौन सा है जिसने ऐसा मानव बनाया जिसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई प्रेम नहीं, जिसमें कोई गुण नजर नहीं आते। भगवान भी कुछ ऐसा ही होगा जिसकी रचना ऐसी है। तो जब बेंगलोर में किसी लौकिक रिश्तेदार के देहांत के फंक्शन में दादी हृदय पुष्पा जी के प्रवचन चले, तो लौकिक रिश्ता होने कारण जाना ही पड़ता था, लेकिन जैसे अन्य महात्माओं को सुनने के लिए हमें इच्छा नहीं रहती थी क्योंकि उसके जीवन में सच्चाई नहीं थी, प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए हम कभी कोई मंदिर या कोई सत्संग कभी नहीं जाया करते। परंतु लौकिक माँ क्योंकि वो दादी जी को जानती थी और हमारे लौकिक जन्म के पहले भी कई वर्ष पहले वो बाबा से मिली भी थी, ज्ञान में भी चली थी, लेकिन क्रमानुसार कुछ समय उसका पाठ वहीं समाप्त हुआ था। तो वो तो जानती थी कि दादी जी कौन है, किसके बारे में समझा रही हैं, और फिर से उसको जागृति अर्थात फिर से चांस मिलने का कारण उसको तो बहुत खुशी होती थी। तो वो तो बहुत खुशी से उस सत्संग में जाया करती, और सत्संग अगर 5 बजे का होता तो वो तो 3 बजे चली जाती। तो हम ही कहते कि तुम तो भले 3 बजे जाती हो, लेकिन मैं क्या करूं वहां पर। तो वो यही कहती कि तुम भी चल करके सुनो, ये सुनने जैसी बातें हैं। मन में संकल्प आता कि कभी किसी सत्संग के लिए इसने कभी बोला नहीं, न कभी लेके ही चली थी, और न खुद उसी ने इतना आना जाना किया भी था किसी सत्संग में। लेकिन अब इस सत्संग के पीछे इतनी लगन, इतना जल्दी जाना और इतना देर तक वहां रहना, जबकि हम ही मुश्किल से उसको वहां से बुला करके और घर ले चलते। अगर ये नहीं बोलते तो वो तो शायद वहीं पर बैठी रहती। तो संकल्प जरूर चलता था, लेकिन सोचते नहीं थे, क्योंकि मन में यही था कि ये भी सब जैसे अन्य महात्मा लोग हैं ऐसे ही होंगे, जो आते हैं पैसे लेने के लिए, और बाकी उनकी जीवन की कोई धारणा नहीं है। परंतु दादी जी में एक अत्यंत सादगी और सब आत्माओं के लिए एक विशेष स्नेह भावना, ये एक विचित्र था। उसका सबसे मिलना जुलना, बात करना या समझाना, जिसमें कोई अभिमान नहीं था, लेकिन एक जिज्ञासा थी कि जो भी आते हैं वो इस सत्संग से पूर्ण रीति से लाभ ले। परंतु फिर भी भले उसने बहुत ही लगन से हमें समझाया, लेकिन जब तक बाबा कहते हैं ना कि देह अभिमान को दिमाग के अंदर से निकाला नहीं है, तब तक कुछ अंदर जाता ही नहीं। तो दादी जी ने बतलाया कि तुम कल आना, मैं कल तुमको हिस्ट्री और ज्योग्राफी सुनाऊंगी। तो हमने पूछा आप कितना पढ़े हुए हैं। दादी ने बताया कि पढ़ाई तो हमने 3रे दर्जे तक ही की हुई है। तो हमको हंसी आई कि हम उनसे अधिक पढ़े हुए हैं, वो कौन सी हिस्ट्री ज्योग्राफी हमें सुनाएंगी। लेकिन हमने बाहर कुछ बोला नहीं, और बल्कि यही देखने के लिए दूसरे दिन आए कि वो क्या इतिहास सुनाएंगे। तो दादी जी को पहले से ही हमारी लौकिक माँ ने बता ही दिया था कि हमें कोई विश्वास नहीं उनके बातों पर, और जब तक कि हम पूर्ण रीति से एक प्रूफ के रीति से हमने उस ज्ञान को समझा नहीं है, तब तक हम उसमें चलने वाले नहीं है। तो दादी जी ने पूछा कि तुम धर्म को मानती हो। मैंने कहा मैं इतना ही मानती हूँ कि भगवान एक है, परंतु हिंदू धर्म को मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि हिंदुओं के अनेक भगवान हैं और उनके अनेक रूप हैं, जिसमें तो इतनी गिलानी है कि किसकी स्त्री चुराई गई और किसी ने दूसरे की उठाई। ऐसे कौन भगवान है जिसकी हम बैठ करके पूजा करें। इससे तो क्रिश्चियन धर्म अच्छा है, जिसमें कम से कम इतना एक भगवान के लिए कहा हुआ है। तो भगवान तो एक ही है, इसलिए चाहे मैं हिंदू को मानू चाहे मैं क्रिश्चियन को मानू, इसमें आपको एतराज है। तो दादी जी ने कहा नहीं, धर्म तो एक ही है क्योंकि भगवान एक ही है, लेकिन हिंदू या क्रिश्चियन का सवाल नहीं, सवाल ये है कि भगवान कौन है। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमको भगवान के बारे में भी कभी स्टडी करना पड़ेगा। ये तो एक मानी हुई बात थी कि भगवान है, आगे चाहे हम उसको जिस रूप में माने या न माने। तो जब उसने ये सवाल किया तब मैंने कहा क्यों, क्राइस्ट ही तो भगवान है। तो कहा अच्छा, पूर्ण रूप से मानती हो जानती हो। मैंने कहा हाँ, उसके इतने चरित्र हैं, उसकी इतनी शक्ति गाई हुई है, उसके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं जिससे हमको कोई नफरत उठे, लेकिन जैसे श्री राम है, श्री कृष्ण है, इन सब के बारे में जो भी लिखा हुआ है क्या वो कोई भगवान के चरित्र माने जा सकते हैं? तो उसने कहा बिल्कुल ही नहीं। मैंने कहा फिर तो मैं ठीक हूँ कि क्राइस्ट ही भगवान है। तो कहा मेरे एक प्रश्न का अगर तुम उत्तर दोगी तो फिर तुम ही उसका उसकी वास्तविकता समझोगी। तो दादीजी ने सवाल किया कि क्राइस्ट का भी बाप कौन है? मैंने कहा क्राइस्ट का बाप कौन होता है? वो तो स्वयं ही है सब कुछ। कहा नहीं, जब उसको सूली पर चढ़ाया गया तब उसके मुख से ये शब्द क्यों निकले कि हे पिता इन सब पर रहम करो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो पिता कौन जिसको वो पुकार रहा था? उस समय तो कोई और था ही नहीं जो उसका सुने, तो उसके मुख से ये किसके बारे में ये शब्द निकले उसका जरा जवाब देना। मैं तो सोचती किसने मॉरल साइंस के अंदर क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है। तो तब मैंने दादी से पूछा कि ये सवाल क्यों? वो तो जैसे लिखने के लिए ऐसे लिखा हुआ है लेकिन क्राइस्ट ही सब कुछ है। दादी ने कहा तुम जवाब नहीं दियो, लेकिन तुम्हारे जो बड़े बैठे हुए स्कूल में जिसको तुम मानती हो उससे जाके पूछ के आओ, और सारे दिन के अंदर तुम पूछना, कल मेरे पास जवाब ले आना। ये हमारे पास एक चैलेंज थी कि अगर हम जीत जाएं तो हो सकता है कि हम दादी जी को गलत दिखा सकते। जब मैं स्कूल में पहुंची जिससे मैं सवाल करूं वो एकदम मेरे को खंडित दृष्टि से देखे कि पूछना भी एक पाप है और कौन तुमको बहका रहा है, क्योंकि वो सब समझते थे कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो क्रिश्चियन बच करके क्राइस्ट के बारे में पूछे ये तो एक बड़ी गलत बात है। जो भी मिले वो कहे कि तुम चर्च में जाकर के पेनेंस करो, तपस्या करो, तुमने एक बहुत बड़ा पाप किया है कि क्राइस्ट के बारे में तुमने ऐसा सवाल किया। तो मेरे अंदर कोई क्रिश्चियनिटी के लिए ऐसी कोई भावना नहीं थी जो मैं इस बात को एक पाप मानू। तो मैं चुपचाप जो भी मिलता उससे पूछती, क्रिश्चियन लड़कियां भी उनसे पूछती तो वो सब कहते कि शायद कोई आपको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब दूसरा दिन दादी जी के पास जाना हुआ तब तो बड़े ही संकोच से दादी जी के पास जाके ऐसे ही शांत रूप से बैठे। पहले जब जाते थे तो एकदम अहंकार से, और उस दिन जब गए तो एकदम शांत। दादी जी समझ गई कि जवाब तो है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से। फिर भी उसने एक अभिमान से नहीं परंतु प्यार से पूछा, जवाब मिला? मैंने कहा कि जवाब शायद आपके पास है, आप सुनाइए। तब उसने जो क्रिश्चियन की हिस्ट्री है उसी का उदाहरण देकर के सुनाया कि जो स्टार चमका था, जिसने क्राइस्ट का साक्षात्कार दूसरों को कराया था, जिसने मेरी को साक्षात्कार दिया था, वो जो रोशनी चमकी थी वो स्टार कौन था, उस स्टार के बारे में ही हम यहाँ समझा रहे हैं इतना दिन। तो जब उसने इतना बैठ करके समझाया तब हमारे दिमाग में कुछ बैठा कि इसके पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो हमने शायद कभी कहीं सुना न हो। तब उसके बाद कुछ लगन से हमने क्लासेस अटेंड की जिसमें जो सर्वप्रथम प्रश्न था कि मानव को बनाया किसने, हु मेड मैन। तो मैंने भी दादी जी से यही सवाल किया कि ईश्वर की रचना कौन सी है, मानव को किसने बनाया? तो दादी ने कहा कि भगवान ने बनाया, लेकिन जो मानव तुम देख रही हो वो मानव नहीं, वो मानव जिसको दुनिया सारी देवता कहती है ऐसी दिव्य जीवन बनाने वाला स्वयं परमात्मा है। तब हमको ये मन में संकल्प आया कि चलो कम से कम इसके पास ऐसा तो उत्तर है जिसको हम आगे भी समझ सकते हैं। जैसे जैसे रोज मैं क्लासेस में जाती रही दादी जी कोर्स भी कराती, बाबा की बातें भी सुनाती और अपने जीवन के अनुभव को भी सबके सामने रखती। लेकिन प्रैक्टिकल में एक बार एक ऐसी घटना घटी जो कोई भी व्यक्ति होता तो चिल्लाता या उसके मुख का कुछ परिवर्तन जरूर होता चेहरे के अंदर, लेकिन दादी जी के चेहरे पर एकदम शांति और हर्षित मुख चेहरा और फिर से जैसे वो कार्य करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अर्थात जिस लौकिक परिवार के अंदर दादी जी के प्रवचन चल रहे थे वो हमारे लौकिक मामा के घर का था और बाहर फौरन से लौकिक मामा आए हुए थे जिन्होंने दादी से पूछा कि आप अकेले अपने लिए क्या क्या बनाते, क्या हमें भी कब कुछ खिलाओगे या नहीं, क्योंकि दादी जी अपना ही भोजन बनाती थी। तो उसने कहा क्यों नहीं, तो मैंने कहा कि आप सबके लिए खाना बनाएंगे, तो बोला हाँ क्यों नहीं। तो दादी जी भंडारे में गई तो बाहर से मामा ने कहा कि हमारे लिए पकोड़े बनाओ, दादी ने कहा जरूर बनाऊंगी, लेकिन इतना तो अभ्यास था ही नहीं दादी को। तो जब वो भंडारे में गई और गरम कढ़ाई चूल्हे पर रखी हुई थी एकदम उसके अंदर आग लगी और दादी ने उसको ऐसे उठा करके नीचे फेंका और सारा इतना गरम तेल उसके हाथ पर आया, एकदम दादी जी शांत हो गई और नल खोल के पानी के नीचे हाथ रख दिया तो हमारी तो चीख निकल गई, लेकिन दादी एकदम ऐसे शांत और फिर वापस कढ़ाई चूल्हे पर रखने लगी जैसे कि कुछ हुआ नहीं और उल्टे हाथ से फिर पकोड़े बनाने लगी। मैंने कहा दादी आपको दर्द नहीं हो रहा है, हाथ नहीं जल रहा है, तो कहा ऐसी क्या बात है, बाबा सब कुछ ठीक कर देता है। मैंने कहा बाबा वहाँ बैठा हुआ है और यहाँ कैसे ठीक करेगा। तो इस तरीके से मतलब हर बात में दादी बाबा 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 का ही स्मरण दिलाती। तो मैं जब ये सुनती तो मैं ये सोचती कि आखिर ये बाबा कौन है जिसने एक ये ऐसी आत्मा और इनके साथ में इतनी अनेक आत्माओं को ऐसा जीवन बनाया है। इतनी शक्ति है दादी के अंदर, इतनी पवित्रता है, इतनी सादगी है, इतना एकदम देही अपमानी एक स्वभाव है, ऐसा जीवन बनाने वाला वो बाबा कौन। तो हमारे दिल के अंदर ये उत्सुकता रहती कि ऐसे बाबा से मैं भी मिलूं। तो मैंने दादी से सवाल किया कि क्या हम बाबा से मिल सकते हैं, तो दादी ने कहा कि बाबा से तुम पहले समझो तो सही कि किसके पास जाना चाहती हो, वो कौन है। मैंने कहा कौन है, बाबा ही तो है, आप भी तो बता रही हो। तो कहा बाबा कोई साधारण नहीं है जिसको तुम देखो और समझो, लेकिन जब तक पहले उसको समझा नहीं है तब तक देखने के बाद भी उसका अनुभव नहीं हो सकता है। मैं सोचती थी ऐसा कौन है पर्दे नशीन जिसको हम इतने दिनों के बाद भी इतना ज्ञान सुन रही हूँ फिर भी दादी कहती हैं कि समझ नहीं सकती हैं। तो मैंने कहा दादी उसको और क्या समझना है। दादी ने कहा देखो अभी तक तो तुम केवल ज्ञान समझ रही हो, लेकिन ज्ञान देने वाला कौन है और इस ज्ञान देने का उसका लक्ष्य क्या है, इन बातों को भी तुम समझो तब तुम अपने अंदर कुछ परिवर्तन ले आ सकती हो। और जब वो परिवर्तन अनुभव होगा उसके बाद बाबा से जब मिलोगे तो भी बाबा क्या है वो विशेषता बाबा की जो भी कुछ है तुमको अनुभव होंगी, जिसको कहा जाता है कि ज्ञान का तीसरा नेत्र है। मैं सोचती थी ये तीसरा नेत्र कहाँ लगाया जाएगा, क्या इन नेत्रों से आपने बाबा को नहीं देखा तो हम क्यों नहीं देख सकते हैं। दादी ने कहा नहीं, जब तक तीसरा नेत्र नहीं खुला है तब तक तुम इन नेत्रों से देखते हुए भी जैसे वो अनुभव नहीं कर सकोगी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद दादी जी ने सबको कहा कि मधुबन में पत्र लिखो, तो हमने कहा कि पत्र का जवाब आएगा। दादी ने कहा तुम लिखो, अगर तुम्हारे पत्र के अंदर ऐसी कोई बात होंगी बाबा जरूर जवाब देंगे। तो उन दिनों में हम हिंदी अर्जुन कुछ थोड़ा सीख ही रही थी इसलिए हमने इंग्लिश में लिखा, तो दादी ने कहा इंग्लिश में तुम हिंदी में लिखो। हमने कहा नहीं, भगवान है तो इंग्लिश में हो चाहे किसी भाषा में हो मेरा उत्तर जरूर देगा। दादी ने कहा तुम जिद नहीं करो, लेकिन तुम हम सबके साथ में, सभी भी तो एक ही भाषा में लिख रहे हैं, तुम भी उसी में लिखो। मैंने कहा नहीं, मैंने पत्र लिख दिया है, आप उसको भेजो। तो पत्र में मैंने लिखा था कि हम और हमारे साथ में चार सहेलियां, पांचों ही ज्ञान में चल रही हैं। ज्ञान में चलना क्या था ये मालूम नहीं था, लेकिन क्योंकि रोज क्लास अटेंड करते थे इसलिए बाबा को ये लिखा कि हम पांचों ही ज्ञान में चल रही हैं। और माला के दाने के लिए दादी ने बताया था, तो बाबा को लिखा कि पांच दाना रिजर्व करना, जैसे हम ओम प्रकाश भाई को लिखते हैं ना रिजर्वेशन के लिए। इस तरीके से हमने मामूली बात समझ करके लेकिन एक दाव लगाया और बाबा को लिखा। बाबा को मालूम तो था कि यहाँ पर कौन कौन है। जब चिट्ठी का उत्तर आया तो अन्य सबके लिए तो इकट्ठा ही याद किया था, लेकिन बाबा ने हमें अलग पत्र लिखा था। तो पहले तो वो खुशी का पारा चढ़ा कि भगवान ने हमको जवाब दिया है। तो मैं सबको सुनाने लगी जो भी हमारी फ्रेंड्स थी कि भगवान ने हमारा पत्र का जवाब दिया है। बोले तो मूर्ख को भगवान को जवाब देता है? मैंने कहा नहीं, हमें जरूर जवाब आया है। तो जब वो चिट्ठी पढ़ी तो बाबा ने लिखा था कि बच्चे तुमने जो लिखा है माला का दाना रिजर्व करना, तो बाकी चार का तो देखा जाएगा, लेकिन तुम्हारा जरूर है। तो मैंने को आश्चर्य हुआ कि बाकी चार का क्यों कट कर दिया बाबा ने और मेरा रिजर्व कर दिया, जबकि हम पांचों ही आते हैं इकट्ठे क्लास में। दादी से मैंने जब सवाल किया तो दादी ने कहा कि इसमें भी कोई राज होगा। मैंने कहा चिट्ठी में जो बाबा ने लिखा है वो तो खुला है, इसमें क्या राज हो सकता है। लेकिन एक महीने के अंदर देखते देखते वो चार सहेलियां पीछे ही रह गई, जिससे बाबा की बात सिद्ध हुई कि बाकी चार का तो देखा जाएगा, क्योंकि उनका पाठ था ही नहीं। लेकिन हम ये कैसे समझे, हम तो प्रेजेंट ही देखते थे कि हमारे साथ में चल रही है, लेकिन बाबा तो दूरदर्शी था। जो हमने अज्ञान काल में सुना था कि भगवान सब कुछ जानता है, वो प्रैक्टिकल में एक एक बात में हम देखते गए कि जब तक हम मिले नहीं है हमने बाबा को समझा नहीं है, लेकिन यहाँ से दूर बैठे भी बाबा हमारे आदि मध्य अंत हमारे जन्म पत्री को जानता है। तो जब 6 महीने के बाद दादी हमको ले चली मधुबन, तो सारा रास्ता दादी पाठ पढ़ाती रही। देखो चल रही हो, फेल नहीं होना। घबराहट होती थी, ये सवाल दादी करती थी जब बाबा पूछेगा कि पहली बार आई हो तो तुम क्या जवाब दोगी, कह देना कि कलप कलप मिले हैं। अच्छा, ऐसे 2-3 सवाल दादी बार बार याद कराती रही। हमें तो बहुत घबराहट होती थी कहीं एक का दूसरा उत्तर हो जाए, लेकिन जब बाबा से मिले तो बाबा हम इस मकान में नहीं लेकिन जो गवर्नमेंट सर्किट हाउस है, जो पहले कोटा हाउस था, हम वहां पर बाबा से मिले थे। बाबा ने कहा बच्चे पहुंच गए, 4-5 हम गए थे, हरेक को दृष्टि देके बाबा हरेक से जैसे दादी जी ने कहा था सवाल पूछते गए, लेकिन ज्ञान तो हमने समझा ही था परंतु योग को मानती नहीं थी, क्योंकि प्रैक्टिकल देखने का जो एक अभ्यास था कि जो मैं देखूं वही मानूं, तो योग तो कोई बाहर देखावटी का था ही नहीं, अंदर की बात है। तो मैंने किसी को बोला नहीं, डर था बोलूंगी तो मधुबन नहीं ले जाएंगे, लेकिन मन में ये जरूर संकल्प था कि जब योग में बिठाएंगे तब मैं क्या करूंगी। तो जैसे लौकिक घर में लौकिक माँ को दिव्य दृष्टि का पाठ मिला था, तो वो हम लोगों ने सबने देखा तो विश्वास जरूर होता था, परंतु फिर भी वो साक्षात्कार था जिसको हमने योग से अलग रखा था। योग से पाप भस्म होते हैं, इतनी सब बातें जब मैं सुनती थी तो कभी भी मैंने उसको माना नहीं। अच्छे कर्म करना है तब पिछला कोई हिसाब अगर कोई है तो वो चुप हो सकता है, ये हमारा एक संकल्प था। तो जब मैं बाबा से मिली तो बाबा एकदम दृष्टि देने लगे, और जैसे मैंने बाबा से नई मुलाकात की तो मैं समझती हूँ 2-3 मिनट ही होंगे, बाबा ने कोई प्रश्न पूछा नहीं और 2-3 मिनट हम ध्यान में चले गए। और उसके बाद क्लास पूरी हुई, 3 घंटे सबने नाश्ता वगैरह सब कुछ पूरा किया, मैं वहीं बैठी रही। जब मैं आंख खोली तब मैं मामा के गोद में थी। मेरे को हैरानी हुई जब सामने देखा था तो बाबा, और अब मामा के गोद में क्यों हूँ। तो उसके बाद सब एक एक करके आए और पूछे कि तुमको क्या हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, बाबा कहाँ चले गए। तो मामा ने बताया कि बच्ची तुम गुम हो गई थी। मैंने कहा मैं तो यही हूँ। बोला नहीं, अच्छा तुम ध्यान में चली गई थी और तुमने क्या देखा। बाबा ने मेरे को विनाश की सीन, स्वर्ग के नजारे, और बाबा मामा रंगीन वस्त्रों में जैसे सभा में बैठे हुए जिनकी ताज पोशी हुई हो, और हम सब सामने भले सफेद वस्त्रधारी परंतु एकदम चमकते हुए। तो ये सीन तो हमने देखी लेकिन बताई नहीं किसको। तो जब बाबा से मिले तो एकदम इतनी कशिश, इतनी आकर्षण जो मैं बता नहीं सकती। और जैसे ही बाबा से मिले, बाबा ने पूछा बच्ची अनुभव हुआ। तो एक बाबा ही समझे और हमने समझा कि बाबा किस प्रश्न का उत्तर पूछ रहा है, कि जिस योग को मैं मानती नहीं थी उसका अनुभव हुआ या नहीं। मैंने सिर हिलाया और बाबा ने कहा अच्छा सुनाओ। मैंने कहा सुनाऊंगी शर्त पर कैसी सीन आप यहाँ पर दिखाएंगे। मैंने भी जिद की। तो उसमें बाबा ने कैसे हरे की इच्छा पूर्ण करनी है, बाबा का ये एक लक्ष्य रहता था। छोटे से छोटी बात, और चाहे वो कितना भी छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, बाबा हरे की आज पूर्ण करने वाले हैं। भक्ति मार्ग में सुनते थे लेकिन हमने एक साधारण सी बात बाबा के सामने रखी और उसके ऊपर जिद किया, और बाबा ने प्रैक्टिकल में उसको पूर्ण किया। लेकिन उसमें मैंने एक विचित्र बात देखी कि बाबा स्वयं अथॉरिटी होते हुए भी उस बात को स्वयं हाँ नहीं की, लेकिन बार बार मामा की जो लौकिक माँ थी वो भी संदेशी थी, बार बार उसको मैसेज दे रहे कि तुम बाबा से पूछ के आओ। मेरे अंदर संकल्प चलता कि बाबा और कौन सा है, यही तो बाबा है, फिर बाबा स्वयं हाँ क्यों नहीं करते हैं, बाबा किसके पास मैसेज भेज रहे हैं। तो मैं उसके पीछे पीछे जाती कि वो कौन सा बाबा है जिसके पास वो मिलकर के आती है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि बाबा ने हाँ बोली, बोला नहीं बाबा बिल्कुल मना कर रहे हैं कि ऐसे दृश्य की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा नहीं, बाबा को मानना ही पड़ेगा। मैंने भी क्यों जिद किया मेरे को भी मालूम नहीं है, लेकिन शायद उसमें एक लेसन सिखाने के लिए ये पाठ चला कि ये बाबा एक और भी बाबा है। जिसके बाद तीसरी बार जब मैंने बहुत जिद किया और उस संदेशी को ही मैंने कहा कि इस बार हाँ में जवाब लाना, तो वो जब लौटी तो बाबा को बोला कि बच्ची की आज पूर्ण करनी है इसलिए रात को भले प्रोग्राम रखना। मेरे को बड़ी खुशी हुई। उसमें मैंने देखा कि बाबा कितने नेचुरल रीति से, इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी, और छोटी सी बात को भी कैसे मान गए। और मैंने कहा कि बाबा को भी श्रृंगार करना होगा और मामा को भी। बाबा ने कहा अच्छा, क्योंकि बाबा की छुट्टी आ गई है इसलिए तुम्हारे दिल पूर्ण करेंगे। तो उस समय बाबा ने उस महफिल के अंदर वो दृश्य जो हमने देखा था, जो सब सजे हुए थे ऐसे बाबा ने सामने दिखाया। उसके बाद बाबा के निकट संबंध में हम आने लगे और वर्तमान तो 5 दिन ही यहाँ पर हम रुकते हैं, लेकिन उन दिनों में कभी 8 दिन कभी 10 दिन जरूर चांस मिलता था। तो ये जो बाबा तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से खेलूं, ये जो बाबा ने बताया है वो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, लेकिन उसका अनुभव हमारे पास नहीं था। तो जैसे मैं बाबा से मिलती बात करती, बाबा को ब्रह्मा मानो या शिव बाबा मानो ये कभी मैंने संकल्प नहीं किया, लेकिन बाबा भगवान है यही मेरी दृष्टि रहती थी। तो भगवान कैसे चलते हैं, भगवान कैसे खाते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं सबसे, मैं इस भावना से इस नजर से देखती थी। तो मेरे अंदर ये खुशी होती थी कि मैं भगवान से बैठी हूँ, भगवान से बात कर रही हूँ, भगवान से खेल रही हूँ, क्योंकि बाबा बैडमिंटन खेलते, बाबा कैरम बोर्ड खेलते, बाबा ने कभी क्रिकेट भी खेली हमसे। तो जैसे मैं बाबा से खेलती मेरे अंदर एकदम ऐसी खुशी रहती कि भगवान हमसे खेल रहे हैं। तो भावना जो ऐसी थी, एक दिन बाबा ने साथ में भोजन खाने के लिए निमंत्रण दिया, हमको बड़ी खुशी रही। सारा दिन उसका इंतजार करते रहे कि कभी शाम आएगी, कभी हम बाबा के साथ भोजन खाएंगे। तो बाबा के साथ में जब बैठे थे ईश्वरन हमारे लौकिक माता जी और हम और बाबा, तो बाबा ने पूछा, बच्ची नशा चढ़ता है कि किसके साथ भोजन खा रही हो? मैंने कहा बाबा आपके साथ। तो बोला क्या, किसके साथ खा रही हो? हमको तो घबराहट हो गई। तो बाबा ने कहा देखो बाबा भी उसको याद करके खाते हैं। तो लक्ष्मी बहन को कहा कि देखो मेरे को गरी गरी याद करा ना, बाबा की याद में बैठना है, बाबा की याद में खाना है। मैं सोचती थी कि बाबा तो स्वयं ही है, इसके अंदर ही है, तो इनको क्यों याद करना है, याद तो हमको करनी है, लेकिन बाबा क्यों याद करे। एक दिन जब क्लास पूरा हुआ और मैंने बाबा से पूछा, बाबा आपको याद करने की आवश्यकता क्यों है? याद तो हमको करना है, क्योंकि हमें पाप कर्मों का जो खाता है उसको चुकतू करना है, वसम करना है, आपको याद करने की आवश्यकता क्यों है? बोला नहीं मुझे, ये ब्रह्मा है, इसका भी पुरुषार्थ ही जीवन है, इसको भी अपनी प्रारब्ध लेनी है, इसलिए इसको भी याद करना है। तुम्हारे लिए सहज है, लेकिन बाबा के लिए इतना सहज नहीं है, क्योंकि सभी उसी भावना से देखते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी मेरे को स्मृति दिलानी पड़ती है स्वयं को कि मैं भी बाबा को याद करूं। जब बाबा ने ऐसे बताया तब अपने अंदर संकल्प उठा कि देखो बाबा इतने स्वयं इतनी महान, जिसके अंदर में स्वयं परमपिता परमात्मा इतना कार्य कर रहे हैं, आज उसको भी इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है, तो हम बच्चों को कितनी आवश्यकता होगी। फिर एक बार बाबा ने, बाबा न्यूज सुन रहे थे तो एकदम शांत बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद जब हम गए तो बाबा से पूछा, बाबा आप हमको कहते हैं कि विचार सागर मंथन करना है, क्या आप भी मंथन करते हैं? बाबा ने कहा क्यों नहीं, ये स्टूडेंट है, पहले मैं सुनता हूँ पीछे तुम बच्चे सुनते हो, पहले ब्रह्मा के कान सुनते हैं पीछे तुम ब्राह्मणों के कान सुनते हैं, तो पहले मैं सुनता हूँ और मैं भी मंथन करता हूँ, तो क्या तुम समझती हो कि खाली शिव बाबा मुरली चलाते हैं? क्या बाबा कभी नहीं मुरली चलाते हैं? तो मैं मंथन करता हूँ तभी तो मैं मुरली चला सकता हूँ, मतलब इस फकुर से इस नशे से कि मैं भी मंथन करता हूँ और मैं भी कुछ सुनाता हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। तो उस स्टूडेंट का भी नशा था, उस सुनाने का भी था, लेकिन एक स्टडी का इतना था कि बाबा ने आगे रात्रि क्लास में चल करके उस पॉइंट को उठा करके कहा कि बच्चे बाबा से प्यार है तो उनको मुरली से प्यार जरूर होगा, अगर जो मुरली मिस करते हैं तो मैं कभी नहीं मानूंगा कि वो बाबा को प्यार करते हैं। बाबा को जितना मुरली की कदर है उतना बच्चों को भी होनी चाहिए। जिसका प्रैक्टिकल में एक बार बाबा सवेरे 5 बजे के समय में बगीचे में टहल रहे थे तो आंख में कुछ कंकर पड़ गया, तो ऐसे ही आंख लेकर हाथ रखकर के बाबा क्लास की ओर चलने लगे। तो दीदी जी थी तो दीदी जी ने कहा कि कुछ आप रेस्ट कर लेंगे और थोड़े समय के बाद आप आए, तब तक हम लोग क्लास संभालेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं, मैं कोई आंख से कोई बात करूंगा, मुख के द्वारा ही तो बाबा आकर के मुरली सुनाएंगे। और क्या इस एक आंख के कारण इतने सारे बच्चे जो मुरली सुनने के लिए बैठे हुए हैं उनकी मुरली मिस हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। तो बाबा कभी मुरली स्वयं भी नहीं मिस कराने देते। और जब बाबा टूर पर जाते तो हमने देखा कि ट्रेन में भी कुछ न कुछ मुरली जरूर चलती, और जिसके नोट्स हम बच्चों के पास आते हैं और बाबा ये ध्यान दिलाते हैं कि बच्चों ने मुरली पढ़ी या नहीं, बच्चों के पास मुरली गई या नहीं, इतना बाबा को चिंतन रहता था। तो आज हमारे स्टडी के लिए जो बाबा ने ज्ञान रत्न देने के लिए ये साधारण तन दिया, उनका मूल्य उनके पास इतना था जो बाबा बार बार हम बच्चों को याद दिलाते रहे, जिसको देखकर जिसको सुनकर हम बच्चों ने भी अपने जीवन में ये बात धारण की कि ज्ञान का मूल्य, ज्ञान रत्नों की वैल्यू बाबा के पास जितनी है उतनी हम बच्चों के पास भी होनी चाहिए। तो बाबा के जीवन में हमने स्टूडेंट लाइफ भी देखी, पूछते थे बाबा दूसरों से कि तुम्हारा पुरुषार्थ कैसे है, पुरुषार्थ की लेन देन भी करते रहे, बाबा बार बार बीच में याद दिलाते भी रहते कि बच्चे योग के चार्ट के अंदर कभी रिकॉर्ड खराब नहीं करना, तुम स्टूडेंट हो, डबल स्टूडेंट हो, जैसे उस स्टूडेंट लाइफ में अपने रिकॉर्ड का रहता है, कैरेक्टर का, कॉन्डक्ट का, इस तरीके से अपने चार्ट के ऊपर इतना अटेंशन रहे कि कभी कोई अंगुली उठा न सके, ऐसा चार्ट होना चाहिए। तो बाबा बार बार हमें ये याद दिलाता कि हम कोई साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन भविष्य कितना ऊंच है और कितनी जिम्मेवारी हम बच्चों के ऊपर है, कितना श्रेष्ठ आदर्श जीवन होना चाहिए बाबा ने अपने जीवन से दर्शाया। तो हम यही सोचते थे कि बस पढ़ना लिखना इतना ही है, लेकिन बाबा ने अपने जीवन से दिखाया कि केवल पढ़ना लिखना नहीं, लेकिन बाकी भी जो बातें हैं, जैसे घर संभालना या जो भी ड्यूटीज हो उन पर पूरा नीति से रहना और साथ साथ पढ़ाई को भी साथ रखना। तो जब हम यहाँ पर आते तो सारी दिनचर्या के अंदर बाबा जब क्लास पूरा करके और भंडारे की ओर जाते तो भंडारे के अंदर सब्जियों को देखते, मेरे को याद है कि एक खटिया के ऊपर टमाटर रहते थे जिसको बाबा एक एक को उठा करके देखते थे, और पास में बोली दादी उनके पीछे चलती रहती थी साथ में, और बोली दादी को इशारा करते कि देखो ये आज पूरा करना। आलू रखे रहते उसको भी बाबा उठा उठा करके देखते और फिर बोली दादी को इशारा करते कि आज इसको समाप्त करना। ऐसे ही बाबा को हर एक के एक एक पैसे का इतना होनी चाहिए जो कुछ वेस्ट न हो। आज हम अपने जीवन के अंदर देखें कितनी ये सब धारणाएं, इतना अटेंशन बाबा के ऐसे जीवन से हमने समझी और अनुभव की। बाबा एक बार भंडारे में गए तो सब्जी अजन कटी हुई नहीं थी, लेकिन चूल्हा जलाया हुआ था, आग जल रही थी और बाबा खड़े खड़े देख रहे थे, करीबन 2-3 मिनट खड़े हुए थे। उसके बाद बोली दादी को बुलाया और पूछा कि बच्ची क्यों, कुछ चढ़ाया नहीं है, आग जली हुई है। तो बोला अभी सब्जी आ रही है, धान कटी हुई थी और शुद्धलाई हो रही थी, उसके बाद कुछ चढ़ाने में टाइम। बाबा ने कहा कि इतनी देर ये ऐसे ही चलता रहेगा, इतनी देर ये लकड़ी ऐसे ही वेस्ट जाती रहेंगी। तुम बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि कैसे कैसे बच्चे यहाँ पर बेचते हैं, कितनी कठिनाई से ये मंगाया जाता है। तो इतना तुम बच्चों को कदर होना चाहिए कि यहाँ पर जो कुछ भी आता है उसका बाबा को कितना हिसाब रिटर्न में देना होता है, तो उसकी एक एक के पैसे की वैल्यू तुम बच्चों के पास होनी चाहिए। तो बाबा ने एकदम ऐसे सीरियस दृष्टि से वो बात कही जो आगे चल करके हमारे जीवन के अंदर एक धारणा बन गई कि जो कुछ भी इस ब्राह्मण जीवन के अंदर जो कुछ भी प्राप्त है उसका मूल्य हमें चुकाना होगा। जितने भी भाई बहन मिलकर के जो कुछ भी दान करते हैं उसका भी हमारे ऊपर बोझ चढ़ता है कि अगर हम कुछ वेस्ट करते हैं, छोटी से छोटी बात, लेकिन बाबा का कितना अटेंशन, जो कि हम कभी नहीं उसका सोच सकते, लेकिन बाबा का ध्यान हर एक बात के ऊपर जाता। तो हम जब ऐसे अकेले एकांत में बैठते तो सोचते कि बाबा इतना महान, हम तो समझते हैं कि खाली पढ़ना लिखना है, लेकिन एक छोटी सी बात के लिए भी बाबा का इतना अटेंशन। जब क्लास में बैठते तो बाबा चारों ओर दृष्टि फैलाते और जब कोई चेहरा नजर नहीं आता तो एकदम पूछते, क्यों फलाना बच्चा नहीं आया क्लास में? तुरंत उसी समय जब बाबा को मालूम पड़ता कि नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो बाबा सीधा उस कमरे में चले जाते उसका पूछताछ करने कि क्यों बच्चे, क्या है, कैसी तबीयत है। तो इतना अटेंशन बाबा को कि क्लास में कौन आया कौन नहीं आया और जो नहीं आया तो क्यों, और उस क्यों का जब उत्तर मिलता तो बाबा सीधा ही उसे मिलने चले जाते। तो उस व्यक्ति के मन में कितना ये हर्ष रहता कि आज हमको पूछने वाला बाबा इतना महान और एक आत्मा जो मिस है उसके लिए भी बाबा इतना पूछते हैं। तो बाबा अपनी जीवन चरित्र से हम बच्चों को ये सिखाता कि ये अटेंशन जरूर देना है, एक बाप बनकर अपने बच्चों के ऊपर अटेंशन, एक शिक्षक बनकर अपने विद्यार्थियों के ऊपर अटेंशन कि पढ़ाई पढ़ रहे हैं या नहीं। एक बार हम बाबा के साथ में शाम को टहलने जा रहे थे तो बाबा ऐसे ही वॉकिंग करते बाबा ने कहा कि देखो ये जो जा रहे हैं उन सबको क्या ये मालूम है कि यहाँ से कौन गुजर रहा है, ये तुम बच्चे जानते हो कि ये कौन है, लेकिन वो बेचारे नहीं जानते हैं। तो तुरंत हम बच्चों का अटेंशन बाबा खींचता कि आप अपनी उस श्रेष्ठ स्मृति में रहकर चलते हो तो दुनिया को भी ये नजारा नजर आए कि यहाँ से कौन जा रहा है। तो बाबा के ये शब्द हमको ये याद दिलाते और आगे के लिए ये शिक्षा रह गई कि हम कहीं से भी जाएं, कहाँ भी जावे, लेकिन साधारण है ये बात कभी भी बुद्धि में न हो, परंतु मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये स्मृति हमारे अंदर अगर रहती तो दूसरों को भी वो नजर अवश्य आता। तो एक एक बात में बाबा हम बच्चों को अपने प्रैक्टिकल उदाहरण से ये शिक्षा देते। तो जब हम बाबा से खेल खेलते तो बाबा जो विजयी होता था उनके सिर पर एक टोकरा रखते जिसमें सब्जियों के छिलके होते ताकि उसको ये अभिमान न हो जाए कि मैंने जीता है, और जो हारा हुआ होता था बाबा उसको मिठाई देते ताकि उसको ये कभी गम न हो कि मैंने हार खाई हुई है। तो जब बाबा बार बार ऐसे करते मैंने बाबा से पूछा एक दिन, इससे तो हारना अच्छा है, कम से कम मिठाई तो मिलती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुमने राज को नहीं समझा कि बाबा ने टोकरा सिर पर क्यों रखा, जो विजयी है उसके ऊपर कितनी जिम्मेवारी है सारा कचरा निकालने की, और जो हारा हुआ है तो वो ये ना समझे कि मैं कहीं बाबा से दूर हूँ। तो बाबा का ये जो एक्शन है इसमें गुहे रहस्य हैं, जो समझते हैं तो उनको वो टोकरा उठाने में भी खुशी होंगी। तो उसके बाद आप समझते होंगे जरूर कि हारने के बदले विजयी होने का ही संकल्प होता होगा, ऐसे नहीं कि वो कचरे का टोकरा उठाने के लिए, लेकिन एक नशे से, एक फक्र से कि बाबा ने कोई एक टोकरा हमारे ऊपर कचरे का नहीं रखा, लेकिन आज जो बाबा कहते हैं जिम्मेवारी का ताज, तो ऐसे ताजपोशी बाबा हमारे करते थे। तो जैसे जैसे हम ज्ञान में आते रहे बाबा ने जीवन के अंदर परिवर्तन भी दिखलाया, जो हम स्वयं का खुद खुद स्वयं नहीं समझ सकते थे, लेकिन ब्लॉक के अंदर जो भी मिलते तो उन लोगों को ये परिवर्तन नजर आता, क्योंकि पहले की जीवन अलबेली जीवन थी, ऐश आराम की थी। तो बाबा ने जो जीवन बताई उसमें अलबेलापन नहीं था, लेकिन जैसे बाबा बेफिक्र बादशाह थे, ऐसे बाबा ने हम बच्चों की स्थिति बनाई, जिसमें हम बच्चों को ये एक स्मृति रही कि बाबा सदा साथ है, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो कुछ हो रहा है उस सब में कल्याण है। ये हर बार बाबा ने हम बच्चों को इतने उदाहरणों में ये बात सिखलाई, जो आज दिन तक जो कुछ भी होता है मुख से यही निकलता है, इसमें भी कल्याण होगा, आगे चल करके देखेंगे कुछ रहस्य होगा। पहले जरूर मूंझते थे, लेकिन जब बाबा को देखते थे तो बाबा उस स्टेज पर खड़े थे, बच्चे जो कुछ होता है चलते चलो, देखते चलो, चलते चलो, रुको नहीं। जब हम बाबा के साथ घूमने जाते मामा भी साथ में चलती, बाबा तो एकदम फुल फोर्स से फास्ट चलते, और हमारी सदैव ये भावना रहती कि हम हमेशा बाबा के साथ कदम मिलाकर के चले, तो बाबा की उंगली पकड़ कर चले, कुछ भी हो जाए हम दरवाजे के ऊपर खड़ी रहती ताकि और कोई बाबा की उंगली ना पकड़े। तो बाबा की उंगली पकड़ते हम भी बाबा से एकदम हाइट और हम एकदम छोटे, लेकिन दौड़ते दौड़ते बाबा के साथ में चलते। एक बार यही एरिया है जहाँ पर ओम शांति भवन है, यहाँ ही पहाड़ी थी, बाबा इसी पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, मामा पीछे रह गई थी, तो मामा के साथ भी स्नेह था कि मामा को भी साथ में लेकर के चले, एक हाथ मामा के हाथ हो और एक हाथ बाबा के हाथ हो। तो जैसे हम बाबा के साथ चल रहे थे, मामा पीछे धीरे धीरे आ रही थी, तो जैसे ही मैंने पीछे मुड़ करके देखा बाबा आगे निकल गए, तो मैं सोच में पड़ गई, फिर भी बाबा के पास दौड़ती गई। तो बाबा ने कहा बच्ची रुक गई, मैंने कहा बाबा मामा आ रही है, ऐसे ही कि बाबा रुक जाए थोड़ा। तो बाबा ने कहा अच्छा, बाबा तो हमेशा आगे बढ़ते ही जाते हैं, बाबा कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, बाबा जो आगे बढ़ता है वो कभी पीछे नहीं देखता है। बाबा ने दो तीन शब्दों में ही बात सिखलाई कि कुछ भी हो, कोई भी हो, हमें आगे ही बढ़ते जाना है, कभी किसी के लिए कोई भी हो, किसी के लिए हमें रुकना नहीं है, साथ जो चले तो बेशक चले, लेकिन अगर हमको किसके लिए रुकना होगा तो हम पीछे रह जाएंगे। तो बाबा ने ऐसे थोड़ी सी बातों के अंदर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी जीवन धारणाएं क्या होनी चाहिए, साफ साफ बतलाया। बाबा दूरदर्शी भी थे, बाबा सभी के आधे मध्य अंत का भी जानते थे, जिसको हमने जानी जाननहार समझा हुआ सुना हुआ था वो प्रैक्टिकल में देखा कि जब हमारे लौकिक भाई मधुबन में आए थे, तो हमारे जो लौकिक भाभी हैं, दोनों की अलौकिक शादी बाबा ने ही कराई थी, तो उस समय बाबा ने लौकिक भाई को दृष्टि देते हुए कहा कि बाप तुम्हारे पास बहुत ही उम्मीद रखा हुआ है, बाबा की एक आश तुम पूर्ण करोगे। तो उसने कहा ऐसी कौन सी बात है जो मैं उसके योग्य हूँ। तो बाबा ने कहा कि देखो ये तो तुम ही कर सकते हो। उसने कहा बताओ। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची है, घर में उसको बहुत तंग करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वो भाग के आ सकती है, उसको शादी करनी ही है, इसलिए बाबा समझते हैं कि अगर वो कार्य तुम करो तो बच्ची की भी जान बच जाएगी। भाई ने कहा अगर बाबा ने हमारे ऊपर इतनी उम्मीद रखी है, बाबा जानते हैं कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। बाबा ने एकदम उसको ऐसी दृष्टि दी कुछ समय के लिए, उसके बाद बोला हाँ तुम ये कार्य जरूर करोगे, लेकिन याद रखना कौन से ब्राह्मण ने तुम्हारा कंगन बांधा है, वो अंत तक तुमको स्मृति में रहना, और उसमें माया कभी ना तुमको हरावे, उसके लिए एक बात तुम सदा अटेंशन में रखना कि पढ़ाई कभी मिस नहीं करना। जिस दिन तुमने पढ़ाई मिस की, समझो माया तुमको खा लेगी। तो उसने भी अपने पास वो पाठ पक्का कर दिया और हमने कब उससे जब उसका अनुभव पूछा तो उसने बताया कि बाबा ने जिस दिन मेरे को वो दृष्टि दी उसमें बाबा ने मेरे अंदर पूरी शक्ति भरी और मेरे को ये अनुभव हुआ कि बाबा मेरा ऊपर इतनी समझो उम्मीद रखे हुए हैं और जिसके लिए बाबा ने मेरे को इतनी शक्ति वरदान दी है और बाबा ने मेरा भविष्य जान करके ही ये कार्य सामने रखा है, इसलिए मेरे मन के अंदर कभी भी ये संकल्प नहीं उठा कि कब मन परिवर्तन हो या कुछ ऐसा कोई संकल्प चला हुआ हो। मैंने कभी भी अपने अंदर ऐसे संकल्प कभी ना आने दिया न कभी आया भी है, परंतु बाबा ने जो बात बताई कि पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना वो दिन और आज तक। वो लोग आपस में क्लास करते हैं, अकेले हैं, लेकिन उनों की क्लास चलती है सवेरे, दोनों ही हैं, कभी वो टीचर बनते हैं तो वो स्टूडेंट, कभी वो टीचर बनती हैं तो वो स्टूडेंट, लेकिन पढ़ाई में एक दूसरे में जो इशारा चलता है वो कभी आपस में पॉइंट्स रिपीट करते हैं, जो उनको देख करके अगर कोई जानता ना हो तो ये कोई नहीं समझेगा कि ये आपस में कोई युगल है, लेकिन भाई बहन ही समझते हैं। तो जो बाबा ने इतनी उम्मीद रखी उनका भविष्य जान करके, तो बाबा जानता था तभी उस कार्य के लिए बाबा ने बोला, तो बाबा के शब्दों से भी किसी की फ्यूचर बनती है, भविष्य बनता है, बाबा की दृष्टि से भी बनता है, परंतु जो बाबा के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रख करके चलता है, एक बल भरोसा रख करके चलता है, जरूर उसके जीवन में उन्नति होती है। ये अपना अनुभव बाबा के द्वारा अपने जीवन में हमने प्राप्त किया। परिचय तो बाबा ही ने आकर के हम बच्चों को दिया है कि हम सब आत्माएं हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, लेकिन एक जानकारी के लिए जो ड्रामा में नाम मिला हुआ है वो लौकिक नाम रोजी है, जिसको बाबा ने प्यार से रोज फ्लावर में परिवर्तन किया और आगे सेवा के लिए शिवकन्या नाम दिया। लौकिक परिवार में माताजी और पिताजी और लौकिक दो भाई हैं, लेकिन ज्ञान में लौकिक माँ बाप और एक भाई भाभी ज्ञान में चलते हैं, और बाकी जो एक भाई हैं उसके लिए भी बाबा ने कई वर्षों से कहा था कि बच्ची कहाँ जाएगा, आएगा एक दिन, जरूर आएगा। बाबा के मुखारविंद से जब उनके लिए निकला हुआ है तो वो वैसे बाबा से बहुत स्नेह रखते हैं, भक्ति मार्ग में किसी अन्य को भगवान नहीं माना, उसने बाबा का ही चित्र उसके पास है, लेकिन क्योंकि धारणा पर चलने के लिए अभी तक उसकी इतनी हिम्मत नहीं है तो अभी तक वो बाबा का संपूर्ण नीति से बना हुआ नहीं है, परंतु सहयोग पूरा है। लौकिक भाई और भाभी जो ज्ञान में चलते हैं वो भी अमेरिका में है और वहाँ की सर्विसेस में उनका सहयोग है, और लौकिक पिताजी और माताजी वो अब एडवांस पार्टी में जा चुके हैं, यहाँ भी सेवा में बाबा के साथ उनका पूर्ण नीति से सहयोग था, और अभी भी जबकि एडवांस पार्टी में हैं तो जरूर सेवा के सहयोगी होंगे, जिसमें लौकिक माताजी ने 1972 में इस शरीर को छोड़ा और 1978 में लौकिक पिताजी जो 6 वर्ष तक मधुबन में थे, मधुबन में जिन्होंने नारायण कुमार दादा को देखा होगा तो ये हमारे लौकिक पिताजी थे, जिनका भी अनुभव बहुत ही विचित्र रहा कि कितना खाना खाने पीने वाला, कितना जैसे वो ऐश आराम से जीवन रहने वाला, कैसी कैसी आदतें रही गैम्बलिंग वगैरह की, हांगकांग में जो लाइफ होती है वो आप समझते हो, लेकिन ऐसे को भी बाबा ने जैसे कि उसने दृढ़ संकल्प किया और एक हक से उसके अंदर से जो बाबा के प्रति इतना स्नेह उठा और उस विश्वास से उसने बाबा को कहा कि मैंने जो ये इच्छा रखी है कि आज से लेकर के मैं ये सिगरेट वगैरह नहीं पीऊं, और तभी तो मैं मधुबन में रह सकूंगा। तो उसी दिन जिस दिन वो संकल्प किया वो बाय ट्रेन मधुबन आ रहे थे और अपने आप उसने अपनी जेब से सिगरेट वगैरह सब खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसे मालूम नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसके बाद जब वो बाबा से आए मिले तो उसने एकदम ऐसा अनुभव महसूस किया कि जैसे बाबा उनके लिए इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही पहुंचे बाबा सामने खड़े थे और सीधा बाबा से गले मिले और उसी दिन से लेकर के अपने जीवन में परिवर्तन पाया। तो एक निश्चय से एक भरोसे से कैसे बाबा के ऊपर भरोसा रख करके अपने दृढ़ संकल्प से अपने अंदर परिवर्तन उसने लाया, ये भी बाबा की एक विचित्र सेवा बाबा के जीवन से हमने अनुभव की। और उसने मधुबन में सभी से अपना एक श्रेष्ठ संबंध रखा जो सबको हंसाते जलाते सबसे गुण उठाते और इतना जो देहभिमान में रहने वाला जो अपने को बादशाह समझता, सो बाबा के सामने एक छोटा बच्चा, दादी दीदी के सामने एक छोटा बच्चा होकर कैसे रहा, वो भी बाबा की एक शक्ति रही ऐसे व्यक्ति को इतना परिवर्तन लाने की। तो वो भी